जब भारत पर अंग्रेज हुकूमत चल रही थी, उस वक्त आजादी के लिए इनकलाब के क्षितिज पर वो सितारा उभरा जो सबसे ज्यादा चमकीला था, जिसकी वीरता, तीव्र बुद्धि और देश प्रेम ने कोटि कोटि युवाओं को एक नई दिशा दी। मैं बात कर रही हूं, आप समझ ही गए होंगे, शहीद भगत सिंह की।
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला।
आज शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा और शहीद भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह के साथ बातें रिकॉर्ड की हैं पत्रकार शिवनाथ झा ने, और उन्होंने भगत सिंह के वंशजों की तस्वीरें भी हमें भेजी हैं। आलेख और प्रस्तुतिकरण है कुमुद मिरानी का। शहीद भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 में जारांवाला तहसील पंजाब में हुआ था। उनके पिताजी किशन सिंह थे और माताजी विद्यावती कौर थीं। मगर ऐसी महान हस्ती को एक प्रांत या देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ नहीं देखा जा सकता। भारत के इस महान सपूत को विश्व जानता है। और देखिए ना, खुद भगत सिंह लिखकर गए हैं, अंग्रेजी में लिखा है उन्होंने, आई एम अ मैन, आई एम अ मैन एंड ऑल दैट अफेक्ट्स मैनकाइंड कंसर्न्स मी। भगत सिंह के चाचा जी सरदार अजीत सिंह तथा उनके अपने पिता भी स्वतंत्रता सेनानी थे और उस जमाने में गदर पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। ऐसे माहौल में परवरिश हुई शहीद भगत सिंह की, जिनके अपने आदर्श थे गदर अभियान के करतार सिंह सराभा, जिनको कि 19 साल की उम्र में फांसी पर लटका दिया गया था। भगत सिंह हरदम करतार सिंह सराभा की तस्वीर अपनी जेब में लिए फिरते थे। भगत सिंह ने महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भरपूर हिस्सा लिया था, मगर फिर चौरी चौरा के हिंसक हादसे के बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रद्द कर दिया, तो भगत सिंह की गांधी जी की विचारधारा से कुछ दूरियां बनने लगी। उसके बाद वो नौजवान भारत सभा के सदस्य बन गए और फिर रामप्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद और अशफाक उल्ला खां जैसे देशभक्तों के संगठन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से वो पूरी तरह जुड़ गए। भगत सिंह बचपन से ही बड़े अच्छे जोशीले लेखक भी थे। वो कम्युनिज्म से बहुत ही प्रभावित थे। मार्क्स, लेनिन, एंगल्स, ट्रॉट्स्की की शिक्षा की उन पर बहुत गहरी छाप पड़ी। इन सभी की लेखनी और फलसफे को उन्होंने खूब पढ़ा। लेकिन शहीद भगत सिंह अपने आप में एक विचारधारा थे, एक ऐसी विचार शक्ति जिन्होंने न सिर्फ आजादी के लिए आवाज उठाई और हंस हंस कर फांसी पर चढ़ गए, मगर लाखों युवाओं को एक नई दिशा भी दी। जब लाला लजपत राय ने सर जॉन साइमन कमीशन का शांतिपूर्वक विरोध किया था, उस वक्त निहत्थे लाला लजपत राय को लाठियों से मार के पुलिस ने उनके प्राण ले लिए। ये हादसा भगत सिंह ने अपनी आंखों से देखा और उन्होंने बदला लेने की कसम खा ली। वो लाला जी को मारने वाले पुलिस चीफ स्कॉट को खत्म कर देना चाहते थे, लेकिन कुछ गलत पहचान की वजह से डेप्यूटी सुपरिंटेंडेंट पुलिस जेपी सॉन्डर्स को शूट कर बैठे। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए उन्होंने पगड़ी उतार रखी और अपने बाल कटवा दिए। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट के जरिए पुलिस को और भी ताकत देने का कानून बनाना चाहा और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन के इनकलाबियों भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली पर दो बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए उन्होंने कुछ पर्चियां भी बरसा दी। उनके बम बहुत सशक्त नहीं थे और ना ही उन्हें किसी को भी मारने का इरादा था। बटुकेश्वर दत्त को और भगत सिंह को आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। जेल में भी उन्होंने राजनीतिक कैदियों के बेहतर अधिकारों के लिए जम के भूख हड़ताल की थी और जेल में लिखने पढ़ने का अधिकार पा लिया। जेल में शहीद भगत सिंह ने 404 पन्नों की अपनी जेल डायरी लिखी। इसके अलावा उन्होंने Why I Am an Atheist पर भी अपनी पर्ची लिखी। उन्होंने जेल में लिखा है, क्या खूब लिखा है उन्होंने, अंग्रेजी में लिखा है, My strength is the strength of oppressed. My strength is the strength of oppressed. My courage is the courage of desperation. ये देखिए उर्दू में शेर उन्होंने कहा है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ आपको। भगत सिंह कहते हैं, कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश साई मेरी, कुर्रे खाक है गर्दिश में तपिश साई मेरी, मैं वो मजनू हूँ जो जिंदा में भी आज़ाद रहा। यानी कि मेरी तपिश से खाक का हर जर्रा भी जल बढ़ा है, मैं ऐसा पागल हूँ, ऐसा मजनू हूँ कि जेल में रहते हुए भी मैं आज़ाद हूँ। वाह, क्या बात कही है उन्होंने। यहाँ एक हादसा मुझे याद आया जो मैंने पढ़ा था कि जब भगत सिंह जेल में थे उनका परिवार उनसे मिलने आया था, मगर भगत सिंह के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, हालांकि उन्हें यकीन था कि उनकी अपने परिवार के साथ ये आखिरी मुलाकात होने वाली है। उन्होंने अपनी माँ से कहा, बेबे जी अब ज़्यादा दिन नहीं जीऊँगा, और सबको उन्होंने धीरज दिलवाया। फिर हंसते हंसते मस्ती भरी आवाज में माँ से कहा, बेबे आप मेरी लाश लेने मत आना, कुलबीर भाई को भेज देना, कहीं आप रो पड़ी तो लोग कहेंगे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। यह कहकर वो जोर जोर से हंस पड़े। जेल अधिकारी उन्हें फटी फटी आंखों से देखते रह गए। ऐसे वीर बहादुर थे शहीद भगत सिंह। 23 मार्च 1931 के दिन बड़े सवेरे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर में फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह उस वक्त सिर्फ 24 साल के थे। आमतौर पर फांसी की सजा सवेरे 8 बजे होती है, मगर दंगे फसाद भड़कने के डर से पहले ही चुपचाप बड़े तड़के उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया और जेल खाने से जोरों की आवाजें उठी, इनकलाब जिंदाबाद। कहते हैं उस दिन देश भर में किसी के घर पर भी चूल्हा नहीं जला। और मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ शहीद भगत सिंह का आखिरी खत, जिसके आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। आप उनका बलिदान, उनकी बहादुरी, उनका साहस और उस महान शहीद की विचारधारा खुद समझ जाएंगे। लीजिए पढ़कर सुनाती हूँ शहीद भगत सिंह का अंतिम पत्र। साथियों, स्वाभाविक है कि जीने की इच्छा मुझ में भी होनी चाहिए, मैं इसे छिपाना नहीं चाहता, लेकिन मैं इस शर्त पर जिंदा रहना चाहता हूँ कि मैं कैद होकर या पाबंद होकर जीना नहीं चाहता। मेरा नाम हिंदुस्तान की क्रांति का प्रतीक बन चुका है और क्रांतिकारी दल के आदर्शों और कुर्बानियों ने मुझे बहुत ऊंचा उठा दिया है, इतना ऊंचा कि जीवित रहने की स्थिति में मैं इससे ऊंचा हरगिज नहीं हो सकता। आज मेरी कमजोरियां जनता के सामने नहीं हैं, अगर मैं फांसी से बच गया तो वो जाहिर हो जाएंगी और क्रांति का प्रतीक चिन्ह मध्यम पड़ जाएगा। लेकिन दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी चढ़ने की सूरत में हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों की भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद या तमाम शैतानी शक्तियों के बूते की बात नहीं रहेगी। हाँ, एक विचार आज भी मेरे मन में आता है कि देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे मन में थीं, उनका हजारवां भाग भी पूरा नहीं हो सका। अगर स्वतंत्र जिंदा रह सकता तब शायद इन्हें पूरा करने का अवसर मिलता और मैं अपनी हसरतें पूरी कर सकता। इसके सिवाय मेरे मन में कभी भी फांसी से बच के रहने का विचार ही नहीं आया। मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली कौन होगा? आजकल मुझे खुद पर बहुत गर्व है। अब तो बड़ी बेताबी से अंतिम परीक्षा का इंतजार है, कामना है कि ये और नजदीक हो जाएगी। आपका साथी भगत सिंह।
मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे, मत रो माता लाल तेरे बहु तेरे।
शहीद भगत सिंह। आइए अब सुनते हैं शहीद भगत सिंह के भतीजे प्रोफेसर जगमोहन सिंह की कुछ बातें भगत सिंह के बारे में। शहीद भगत सिंह की बहन थी विद्याम्बर कौर, जो कि उनसे 3 साल छोटी थी, और उनकी औलाद हैं जोगिंदर कौर, जो अब काफ़ी वृद्ध हो गई हैं, 88 वर्ष की हैं, और उनके पुत्र हैं रिटायर्ड प्रोफेसर जगमोहन सिंह। लीजिए, प्रस्तुत है उनकी कुछ बातें।
मैं प्रोफेसर जगमोहन सिंह हूं और मेरे साथ मेरे बड़े सिस्टर बीबी जोगिंदर कौर हैं। हम दोनों शहीद भगत सिंह की 3 साल छोटी उनसे बहन बीबी अमर कौर के बच्चे हैं। मेरी बड़ी सिस्टर जो है, इनका जन्म 1932 में शहीद भगत सिंह की शहादत के 1 साल बाद में हुआ था, और मैंने शहीद भगत सिंह और उनके साथियों के दस्तावेज जो हैं वो पब्लिश किए, और उस वक़्त हमें ये काम करना पड़ा जब सरकार इस काम के लिए पैसे खर्चने और उसकी जिम्मेवारी किसी यूनिवर्सिटी को लगाने से इनकारी थी, और उस वक़्त उनके 50 साल शहादत के मनाए जा रहे थे 1981 में, और यही सबसे बड़ी संवेदना है और संताप है कि शहीदों के नाम को लेके तो बात की जाती है, लेकिन उनके विचारों को, उनके काम को आम जनता के लिए नहीं आने दिया जाता, और शायद इसीलिए उन्होंने अपने एक पत्र में शहीद सुखदेव ने लिखा था कि हमें अंग्रेजों के हाथ शहीद होने का कोई गिला नहीं है, लेकिन हमारे विचारों को जिस तरह दबाया जाता है वो हमें ज्यादा दर्दनाक देता है। और ये एक और शहीद भगत सिंह और उनके साथियों की आजादी की लहर में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसने पूरे भारत की आजादी के संकल्प को बदल दिया। वो ये था कि जैसे उन्होंने जब हाई कोर्ट में असेंबली केस के बाद हाई कोर्ट में अपील की, तो भगत सिंह ने उसमें लिख के कहा कि हमारे विचारों को समझो और हमारे मोटिव क्या है उसको समझो, अगर और हमारे विचारों का आधार दो, मतलब हमारे विचारों के आधार स्लोगन है, एक है इनकलाब जिंदाबाद और दूसरा साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। शायद उससे पहले हम अंग्रेज कौम के साथ मतलब एक लड़ाई लड़ रहे थे कि अंग्रेज कौम से मुक्ति हो जाएगी तो हमारी कौमी मुक्ति होगी, लेकिन शहीद भगत सिंह और उनके साथियों ने गदर पार्टी की जो समझ थी, जिसने 1914-15 में 8,000 लोगों ने विदेश से आके भारत को आजाद कराने की कोशिश की थी, तो उन्होंने कहा था कि ये किसी कौम का राज नहीं है, ये एक सिस्टम है जिसे साम्राज्यवाद कहते हैं, और भगत सिंह ने उस साम्राज्यवाद को अपने स्लोगन में और लाया और वो पॉपुलर किया, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरा उनका है कि आजादी का संकल्प जो है उसको उन्होंने बहुत स्पष्ट करने की कोशिश की। पहले समाजवाद शब्द को उन्होंने अपने पार्टी के नाम में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम में डाला, और फिर उन्होंने कहा कि लोगों को किसी संकल्पिक बात से मतलब मोड़ना जो है वो उनको बरगलाने वाली बात है, एक यथार्थ वाली चीज जो उनको मतलब जीवन का ठीक मतलब समझा सके और उन्होंने क्या प्राप्त करना है वो बता सके। तो इसी की वजह से जब भगत सिंह और उनके साथियों ने एक लंबी भूख हड़ताल की जेल में, और वो दिखाया कि इरादे के साथ जो मतलब आत्मक कदम लिए जाते हैं वो बेसिटा नहीं होते, उनसे नतीजा निकलता है, और अंग्रेज राज को पहली दफा उन चंद नौजवानों के सामने झुकना पड़ा और उनकी मांगे माननी पड़ी।
आप सुन रहे थे कुछ बातें प्रोफेसर जगमोहन सिंह साहब की, जो कि शहीद भगत सिंह के भतीजे हैं। इसी के साथ कुमुद मिरानी को आज्ञा दीजिए। नमस्ते।